तो हम लोग ब्रह्मा जी के दिन और आयु के बारे में चर्चा कर रहे थे, विशेष करके उनके कल्प, उनके दिन। तो जब हम लोग ब्रह्मा जी के आयु के बारे में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत अद्भुत चीज़ है, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं है। हाँ, शाश्वतता के दृष्टिकोण से ये ब्रह्मा जी का इतना लंबा आयु, वो सिर्फ एक, वो हम लोग फोटो लेते हैं ना, फोटो उस समय जो फ्लैश लाइट होता है, उस एक क्षण के लिए ऐसे फ्लैश लाइट होता है ना फोटो लेने से पहले, तो ये लंबा आयु ऐसे है। तो इसको यहाँ पर तुलना किया गया, तो समंदर के ऊपर लहरों के कारण बहुत सारे ऐसे बुलबुले आते हैं, क्या बोलते हैं, बुलबुले ना, बुलबुले आते हैं, बबल्स। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्रह्मांड का सृष्टि होता है और उनका विनाश भी हो जाता है। तो ये ब्रह्मांडों के शक्ति के सृष्टि के साथ साथ, सृष्टि और विनाश के साथ साथ ब्रह्मा भी जन्म लेते हैं और मरते हैं। तो शाश्वतता के दृष्टिकोण से वो कुछ भी नहीं है। ऐसे करोड़ों 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 ब्रह्मांड है, तो उन सब का सृष्टि होता है और नाश भी हो जाता है। तो वो बुलबुले जो होते हैं बहुत लंबे समय तक नहीं रहते, वो थोड़ा समय तक वो आ जाते हैं और फट जाते हैं। तो ऐसे ही ये सभी ब्रह्मांड भी ऐसे आके फट जाते हैं। तो हम लोग पिछले श्लोक में, 16वें श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मा जी क्या हो जाते हैं, ब्रह्मलोक से मुक्त हो जाते हैं उनके अनुयायियों के साथ जो ब्रह्मलोक के निवासी है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं वहाँ पर भी जन्म मृत्यु हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं इसके कारण वो लोग मुक्त हो जाते हैं। तो अगला श्लोक, अव्यक्ता व्यक्तः सर्व प्रभवन्त्यहरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाक्ता सम्यके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में से सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो ये प्रलय का बारे में यहाँ पर वर्णन हो रहा है, ब्रह्मा जी के दिन के अंत में कैसे प्रलय होता है। तो ये विशेष करके प्रलय का भी अलग अलग स्तर के प्रलय होते हैं। तो ये जब कल्प के अंत में, कल्पांत में जब प्रलय होता है, वो निम्न लोकों के जो जीव है उनका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। तो ऊंचे लोग ऐसे ही रह जाते हैं, विशेष करके ब्रह्म लोक और उसके दो तीन ऐसे। तो उसके बाद जो भी लोक है वो सब पानी से डूब जाते हैं। तो भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशत्पार्था प्रभवन्त्यहरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होती है, वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा, हाँ, यहाँ पर जब जब ब्रह्मा के दिन आता है तो सारे जीव प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा के रात्रि होती है तो असहाय विलीन हो जाते हैं। तो इस श्लोक में और पिछले श्लोक में क्या अंतर है? क्या अंतर है? तो बुतवा बुतवा प्रलीयते, वो अंतर है, बार 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 ऐसे होता रहता है। तो पिछले श्लोक में सिर्फ वैसे वो जो प्रलय और सृष्टि के बारे में बताया गया, तो इस श्लोक में वो कैसे बार बार होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर इसलिए वर्णन हो रहा है कि इस भौतिक जगत से हम लोगों को अनासक्ति आ जाए। तो 15वें श्लोक में भगवान दुखालयम अशाश्वतम करके बताए, तो इन सभी श्लोकों में से ये श्लोक और पिछले श्लोक में कैसे वो वर्णन कर रहे हैं दुखालयम और अशाश्वतम है करके। ये शरीर ही जन्म और मृत्यु से गुजरता नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड भी ऐसे होता है, या जो लोक है ब्रह्मांड में जो लोक है वो भी क्या हो जाते हैं, ऐसे उनका सृष्टि होता है और प्रलय होता है। तो उसके कारण जीवात्माएं बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं, कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, लेस इंटेलिजेंट, कम बुद्धिमान वाले हैं, तो वो लोग इस भौतिक जगत में रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक जगह भौतिकवादी का परिभाषा देते हैं। भौतिकवादी कौन है? भौतिकवादी वो व्यक्ति है जब भी इस जगत में कुछ समस्या होता है या इस जगत में ही थोड़ा इधर उधर बदलाव करके क्या इस भौतिक जगत में ही रहना चाहता है, उसको भौतिकवादी कहते हैं। कुछ समस्या आ गया तो इधर उधर थोड़ा बदलाव करके यहीं पर रहना चाहता है, सो ही इज मटेरियलिस्टिक पर्सन। तो कुछ उसमें से कुछ लोग ऊंचे लोक में ही जाना चाहते हैं, लेकिन अभी फिर से वो वापस आ जाते हैं। और ब्रह्मा जी के दिन में वो सब क्या हो जाता है, उनका सृष्टि वो अस्तित्व में आते हैं, रात आता है तो उनका विनाश हो जाता है। तो ब्रह्मा जी के दिन में कई सारे ऐसे क्या है वो जन्म प्राप्त करते हैं, तो रात होता है तो उनका मृत्यु हो जाता है। तो ये सब चीज़ क्या है, एक स्वप्न के समान है ये। तो प्रभुपा जी वर्णन करते हैं रात में स्वप्न होता है और दिन में भी स्वप्न होता है, तो वैसे ही ब्रह्मा जी के दिन में बहुत सारे स्वप्न आ जाते हैं। तो रात का स्वप्न क्या है, वो जब हम लोग रात को सो जाते हैं अपने आप को भूल जाते हैं, भूल जाने के बाद क्या हो जाता है, तो वो स्वप्न में हम लोग अलग अलग व्यक्ति के रूप में कार्य करते रहते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, हम लोग राजा बन जाते हैं, कोई रानी होती है या कोई ऐसे पंछी की तरह उड़ते रहते हैं, है ना, कोई विमान में चलता रहता है, ऐसे अलग अलग चीज़ वो हम लोग देखते हैं स्वप्न में, फिर उठ जाते हैं तो वो स्वप्न टूट जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये दिन में भी एक 100 साल का स्वप्न हो रहा है, वहाँ पर रात को शायद 1 घंटे का स्वप्न हो, ऐसे हो सकता है। तो ये 100 साल हम लोग अपने आप को कुछ ऐसे पहचानते हैं, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, और अलग अलग कार्यों में क्रियाशील हो जाते हैं, तो मृत्यु आ जाता है तो ये स्वप्न खत्म हो जाता है। तो वैसे ब्रह्मा जी के दिन में बहुत सारे ऐसे स्वप्न देखते हैं हम लोग, फिर उनका जब रात आ जाता है तो वो सपना सपने सभी खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे ये सब जीवन क्या है, स्वप्न के समान है। तो बुतवा बुतवा प्रलीयते, सो बार बार ऐसे होता है। तो बुद्धिमान लोग ऐसे जीवन में अपने आप को नहीं, ऐसे जगत में अपने आप को नहीं रखना चाहते, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसको वो लोग अभ्यास करके इसी जीवन में मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव हो जाते हैं। इस प्रकार इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वह पर पुनर्जन्म के चक्र चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव अनुभव करते हैं। तो ये सब सही नहीं है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार सृष्टि में भाग लेना और उससे और विनष्ट होना, तो ऐसा लगता है कि लंबे समय तक अव्यक्त रूप में रहना वो कुछ अच्छा चीज़ नहीं है। जैसे भागवत में वर्णन आया ना, 9 महीने तक हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं, तो वो क्या अच्छा चीज़ है? वो वहाँ पर वर्णन आता है तृतीय स्कंद में, कपिल देव कपिल मुनि वर्णन करते हैं कि बहुत सारे ऐसे कष्ट और यातनाओं को झेलना पड़ता है माँ के गर्भ में। वैसे ही हम लोग जब ब्रह्मा जी के दिन में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी के रात में अप्रकट हो जाते हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं, तो वो अवस्था वो ठीक नहीं रहता। जैसे गर्भ में रहते वैसे ही है वो स्थिति, क्योंकि जीवात्मा उसका स्वभाव होता है टू बी एक्टिव, हमेशा क्रियाशील रहना। तो क्रियाशील नहीं रहते हैं तो क्या हो जाता है? तो हम लोग वो स्थिति में ठीक नहीं, वो कुछ आनंददायी नहीं, बहुत दुखदायी है। तो ऐसे बार बार सृष्टि होना, जन्म लेना, मरना आत्मा के लिए वो ठीक नहीं है, तो इसलिए ये सब चीज़ें हम पर वर्णन कर रहे हैं। सो परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यासु सर्वेषु भूतेषु नाशस्तु न प्रणश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यहाँ पर और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। परस्तस्मात् भावम्यम्, सो परस्तस्मात् भावन्यम्, वो अन्य प्रकृति है ऐसे बोल रहे। अव्यक्ता व्यक्ता सनातना, सो व्यक्त और अव्यक्त के परे है। व्यक्त और अव्यक्त का परे क्या है? तो इसका अलग अलग अर्थ होते हैं। व्यक्त और अव्यक्त मतलब इस भौतिक जगत को प्रभुपाद जी इसको वर्णन किया कर देते हैं। हम लोग सब कुछ देख नहीं सकते, भौतिक जगत में भी सब कुछ नहीं देख सकते। हम लोग कुछ ही चीज़ों को देख सकते हैं। हम लोग वो दूरदर्शी यंत्र बनाते हैं, टेलीस्कोप बहुत बड़ा 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 वो बनाते हैं, उससे भी हम लोग सब कुछ नहीं देख सकते। इसलिए कुछ भौतिक जगत व्यक्त है और कुछ भौतिक जगत अव्यक्त है। तो प्रभुपाद जी इसको कहा करते थे, ये पूरा हम भौतिक जगत को ही नहीं देख पाते हैं तो आध्यात्मिक जगत को कैसे देख पाएंगे हम लोग, है ना? ऐसे कहा करते थे। और दूसरा चीज है, ये भौतिक जगत प्रकट भी होता है और अप्रकट भी होता है। बार बार इसका सृष्टि और विनाश होता है, जैसे हम लोगों ने पिछले श्लोकों में कहा, सुना हम लोगों ने, भूतवा भूतवा प्रलीयते। तो इसलिए वो प्रकट भी है और अप्रकट भी, दोनों होता है। इस दोनों प्रकट और अप्रकट जगत के परे क्या है? आध्यात्मिक जगत है। तो वो सनातन है, ऐसे कहते हैं सनातन। श्रील प्रभुपाद जी इसको वर्णन करते हैं कि सनातन धर्म का परिभाषा में ये जो धाम क्या है, सनातन धाम है। सो सनातन भगवान रहते हैं वहाँ पर, सनातन भगवान के साथ सनातन जीव का सनातन संबंध जब सनातन धाम में स्थापित होता है उसको सनातन धर्म कहते हैं। तो ये परिभाषा है सनातन। यहसु सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। इस भौतिक जगत जब नाश हो जाता है तो वो कभी नाश नहीं होता है। तो वास्तविक जो सृष्टि है भगवान का, हालांकि ये शब्द उसको लागू किया नहीं जा सकता क्योंकि वो सनातन है, वो आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत को उतना ज़्यादा नहीं है। एक पाद विभूति कहा गया, तो बाद में भगवान वहाँ पर वर्णन करेंगे। एक आम शेन अस्तित्व जगत, सो ज़्यादा से ज़्यादा वही है। और तो भगवद्गीता के प्रमाण के अलावा हम लोग किसी और तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ऐसा कोई जगह है जो सनातन है, शाश्वत है, कैसे समझ सकते हैं? क्या कैसे?
समझना मतलब इंग्लिश इतना समझ सकते कि ऐसी कोई जगह है जिसमें हम इसलिए हर कोई सनातन चीज़ की खोज करता रहता है, सनातन संबंध ढूंढता है, सनातन घर ढूंढता है।
तो हम सब लोग क्या है, ऐसे जीवन के लिए खोज कर रहे हैं। तो सिर्फ ऐसे खोज करते हैं तो होता है, कविता बहुत सारे लोग लिखते हैं ना क्या सभी कविता आज वास्तविक होता है?
वो उस समय नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी भी एग्जाम्पल दिए थे, यू आर फीलिंग थर्स्टी, इट मीन्स वाटर इज देयर समवेयर बट इट मे नॉट बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू।
नहीं, हम इन फ्रंट नहीं बोल रहे हैं, आप तर्क दे सकते हैं लेकिन तर्क चाहिए। ऐसे ही हम इच्छा नहीं कर, इच्छा करते हैं उसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो होता है। ठीक है, यही उदाहरण अच्छी तरह से प्रस्तुत करो, वो पॉइंट है। तो हम लोग, हमें प्यास लगता है इसलिए पानी है, हमें भूख लगता है इसलिए अन्न है। हम लोग चाहते हैं, माता पिता चाहिए हम लोगों को, है ना? माता पिता चाहते हैं ना सभी लोग, इसलिए माता पिता भी है, उनकी रक्षा चाहिए हम लोगों को। तो ये तर्क है, हम लोग ऐसा जीवन के लिए खोज कर रहे हैं जो शाश्वत जीवन के लिए खोज कर रहे हैं, इसके कारण वो भी है ना? तो ये प्रकृति के नियम है, ये भौतिक जगत का भी नियम है, ये या ये सृष्टि का नियम है। तो नेसेसिटी एंड फुलफिलमेंट, तो नेसेसिटी है और उसका फुलफिलमेंट भी है, तो ये हमारा अनुभव है। तो इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जगत है जहाँ पर शाश्वत जीवन है। ठीक है, तो और भगवान जो सर्वोच्च प्रमाण है, भगवद्गीता सर्वोच्च प्रमाण है वहाँ पर, तो भगवान जो सर्वोच्च ज्ञान के अधिकारी है वो हमें इसके बारे में समाचार दे रहे हैं। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमको, है ना? रूपा जी कहते हैं, कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है, यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त तथा रात्रि के समय विनष्ट होता होती रहती। यही व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्त का अर्थ होता है, यहाँ पर सृष्टि होता है और विनाश भी होता है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से सर्वथा विपरीत है, परा तथा अपरा प्रकृति के व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। तो ये भगवान की पराशक्ति से यह भौतिक आध्यात्मिक जगत बनता है, यह भौतिक जगत अपराशक्ति से बनता है, भूमि रखो मलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचा। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे, यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के धाम तो ब्रह्मलोक का नाश नहीं होता है। फिर ये किसके परे है? ये सिर्फ ये निम्न नीचे के लोकों के परे है। इस वर्णन के अनुसार तो उनका नाश नहीं था, जो ब्रह्मा जी के दिन के समय में व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती है। ब्रह्मा जी के दिन में तो नहीं होता ब्रह्मलोक का विनाश, और रात्रि, या ब्रह्मा जी दिन और रात्रि के बदलाव, ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में हो सकता है, वो क्या है, सर्वोच्च प्रलय है वो, मतलब प्रलय अलग अलग स्तर पर प्रलय होता है ना, चार स्तर पर प्रलय होता है, तो ये एक प्रलय का वर्णन है यहाँ पर। लेकिन सनातन शब्द को उसको नकार देते है ना, सनातन शब्द क्या है, तो अंत में ब्रह्मलोक भी सनातन नहीं है, इसलिए ये लोक जो है उससे भी परे है, जिसका भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो सनातन, तो श्लोक क्रमांक 31 इस श्लोक के बारे में और विस्तार से बोल रहे, और क्या है इसके बारे में। अव्यक्तो अक्षर अक्षर इत्युक्त स्तंभाहो परमां गतिं अयं प्राप्यनानि वर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जिसे वेदांत या प्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। तो पहले भगवान क्या बताए कि एक सनातन जगत है, ऐसे बोले, तो फिर उसके बारे में और विस्तार से यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको वेदांती, जो वेदांत का अनुयायी है, वो लोग क्या कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, उसको भी अप्रकट कहते हैं तथा अविनाशी बताते हैं। पिछले श्लोक में सकारात्मक दृष्टिकोण से सनातन बताया, और ये लोग भी उसको अविनाशी करके वर्णन करते हैं, जो परम गंतव्य है, परमाम गति, वो सर्वोच्च गति है वो। तो श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्या थी, बहुत सारे शिष्याएँ थी, एक शिष्या के बारे में, वो प्रभुपाद जी के आरंभ में जब आंदोलन शुरू हुआ, प्रभुपाद जी उनके चेयर के ऊपर बैठ के वो जप करते थे, ऐसे वो आके सामने बैठते थे। तो आरंभ में तो वो लोग मतलब दृढ़ भक्त नहीं थे वो लोग। प्रभुपाद जी उनको पूछा, तो क्या प्लान है, ऐसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं सबसे ऊंचा स्थान को स्थान में जाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं टिबेट जाने की सोच रही हूँ। ऐसे वो टिबेट जानते हैं ना, टिबेट में वो माउंट एवरेस्ट है, सर्वोच्च शिखर है, टिबेट को क्या बोलते हैं, ये संसार विश्व का महाड़ी क्या बोलते हैं उसको, विश्व का टेरेस ऑफ द वर्ल्ड, टेरेस मीन्स दिस इज टेरेस, छत, तो विश्व का छत मानते हैं उसको, क्योंकि वो सबसे ऊंचा जगह है ऐसे। लेकिन और भी है बहुत सारे ऊंचा, ये लोग देख नहीं पाते उसको। तो वो ऊंचा स्थान में जाना चाहते थे। प्रभुपाद जी बोले, मैं उससे भी ऊंचा लेके जा सकता हूँ तुमको। ये परमाम बताएंगे, ये सर्वोच्च जगह है, क्या है इससे बढ़कर और कोई जगह, हालांकि ये श्लोक नहीं बताया ना, लेकिन हम बता रहे कि ये परमाम गतिम है, तो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो यम प्राप्य माम निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, तो उसको प्राप्त करने के बाद कोई वापस नहीं आते हैं, ये मेरा सर्वोच्च धाम। कभी कभी लोग इसके ऊपर प्रश्न पूछते हैं, हम लोग यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जो मेरे धाम को प्राप्त करते हैं तो वापस इस जगत में लौट के नहीं आते लोग, इसलिए हम पहले उनके धाम में नहीं थे, इसलिए यहाँ पर है हम लोग, ऐसे बोलते हैं, उनके धाम है में है तो वापस आते नहीं थे, यहाँ पर नहीं आते थे। लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम आना चाहते हैं तो नहीं आ सकते। आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, स्वतंत्रता तो है ना, पहले ही हम लोगों ने स्वतंत्रता के, जीव के स्वतंत्रता के बारे में चर्चा किया। तो कहाँ पर चर्चा कर रहे थे, जीवों को ऐसे क्यों, वो देवी देवताओं की उपासना के बारे में चर्चा कर रहे थे। काम इच्छा या के कारण जीव देवी देवताओं का पूजा करते हैं। वहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं पिछले अध्याय में, भगवान क्यों ऐसे प्रोग्राम बना दिया जीवों में, बनाए नहीं कि जीवों में कि सिर्फ उनको पूजा करे वो लोग। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं वो स्वतंत्रता और अलग अस्तित्व के बारे में वो चर्चा कर रहे थे। तो स्वतंत्रता तो है, आप आना चाहते हैं तो वापस आ सकते हैं, लेकिन आपको बाध्य नहीं किया जाएगा यहाँ पर आने के लिए, लेकिन आपकी इच्छा से आ सकते हैं। और इसके बारे में श्रील प्रभुपाद वो जब मामोपेत्य पुनर्जन्म दुकालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमामगतः परमामगतः, वहाँ पर यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर भी परमाम गतिम शब्द आता है ना दोनों जगह पर, तो वहाँ पर इसको बारे में बोलते हैं। इस परलोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारे भौतिक सृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। तो ऐसे कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं कि भगवद गीता में तो भगवान कृष्ण ने अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत का सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वर्णन वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। ऐसे कहते हैं ब्रह्म समय कैसे वर्णन किया गया है, चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता है वो नमलवार को प्रकट हुआ था, उनके हृदय में प्रकट हुआ था। ये ब्रह्मा जी ने किया हुआ प्रार्थनाएं हैं। तो ऐसे परशर भट्ट अपने रंगराज स्तव स्तुति तो रंगराज स्तव स्तोत्रम ऐसे उसमें लिखते हैं कि कैसे ये ब्रह्म संहिता प्रकट हो गया। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, ब्रह्म संहिता और ये ब्रह्म संहिता के 100 अध्याय है, उसमें से 5वां अध्याय ये वो लेकर आए। तो और एक और ग्रंथ उन्होंने लेकर आए वो कृष्ण कर्णामृत करके, जो बिल्व मंगल ठाकुर ने रचना किया था। तो ऐसे 2 ग्रंथों को लेकर आए हो। तो इसके ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने टीका लिखी है और जीव गोस्वामी ने भी टीका लिखा है इसके ऊपर, ब्रह्म संहिता के ऊपर। तो चिंतामणि प्रकर सद्म कल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभि रवि पाल यंत्र लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम समहम भजामि। लोग मोक्ष का बात करते हैं, मोक्ष मोक्ष, ये मोक्ष शब्द भारत में क्या है, बहुत ही प्रचलित शब्द है। हम मुक्ति पाना चाहते हैं, हम मोक्ष पाना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति पाके मोक्ष पाके क्या करना चाहिए उनको पता नहीं, या मोक्ष के बाद क्या होता है या भगवान के धाम में क्या होता है उसके बारे में गैर जानकारी नहीं। बहुत सारे ऐसे धर्म भी है जो लोग किंगडम ऑफ गॉड बोलते हैं, किंगडम ऑफ गॉड, लेकिन किंगडम ऑफ गॉड में क्या होता है उनको पता नहीं है। या हेवन बोलते हैं, जो अंग्रेजी भाषा में या बाइबल की भाषा में जो हेवन है और हमारे जो हेवनली प्लैनेट्स हम लोग जो कहते हैं वो अलग है। हम हेवनली प्लैनेट्स बोलते हैं तो वो स्वर्ग लोक के बारे में बोलते हैं। तो उस धर्म में जो हेवनली हेवन बोलते हैं वो भगवान के धाम को संबोधित करते हैं। या दूसरे इसको भी जन्नत बोलते हैं ना उसमें हिंदी, उसमें क्या पता नहीं होते वो मुस्लिम, वो स्वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं या स्वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं या वो भगवान के धाम के बारे में, स्वर्ग के बारे में ठीक है वो, लेकिन ऐसे ईसाई धर्म में तो वो लोग भगवान के धाम के बारे में भी बोलते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है उनको पता नहीं। हाँ, बहुत सारे वेदों के अनुयायियों को भी पता नहीं है, बहुत सारे वैष्णव संप्रदायों को भी ये पता नहीं है। वो लोग वैकुंठ के बारे में उनको पता है, हाँ वैकुंठ में ऐसे होता है, भगवान का सेवा होता है करके, हाँ बहुत ही सम्मान पूर्वक भगवान को सेवा किया जाता है, भगवान वहाँ पर मुकुट धारण करके बहुत सारे ऐसे ऐश्वर्य से ना है, लेकिन इसके बारे में उनको भी पता नहीं। गोलोक वृंदावन के बारे में चिंतामणि प्रकर सदम शोर, ये चिंतामणि धाम है, वैकुंठ भी चिंतामणि धाम है। सो लेकिन ये जो चिंतामणि यहाँ पर वर्णन हुआ है, भौतिक जगत में भी चिंतामणि रहता है, आपको पता है ना चिंतामणि अभी लुप्त हो गया, सभी कलियुग के प्रभाव से, कली के लोग इतना प्रगति हो गए हैं कि ये सब उनको जानकारी ही नहीं है इसके बारे में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी आजकल के लोग नया लोग क्या समझते हैं, फिलोसोफर स्टोन बोलते हैं उसको, एक दार्शनिक लोगों का कुछ है, क्या है पत्थर है, ऐसा कुछ है नहीं है ऐसे लोग, लेकिन ऐसा थे तो ऐसे भी पत्थर थे चिंतामणि। लेकिन ये जो चिंतामणि के बारे में इस श्लोक में वर्णन हुआ या चिंतामणि धाम के बारे में वर्णन हुआ है, वो चिंतामणि आध्यात्मिक चिंतामणि है, तो आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक चिंतामणि से बनता है। और चिंतामणि का यहाँ पर क्या लक्षण होता है भौतिक जगत में, जो भी उसको छूते हैं वो क्या हो जाता है, सोना बन जाता है। तो बहुत अच्छा होता था ना, अभी भी होता है, हमारा डोनेशन का समस्या ही नहीं रहता था, मंदिर बांधने का समस्या नहीं होता था। आशा करते हैं आगे जाके कुछ ऐसा भी मिल जाएगा, गोल्डन टेम्पल। तो चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्षा, वहाँ पर कल्प वृक्ष भी है। तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि वहाँ के जो निवासी है, भगवान के जो भक्त है, उनको कोई इच्छा नहीं रहता है पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान की दिव्य सेवा में उनके कहीं सारे इच्छा रहता है, इसलिए ये कल्प वृक्ष है। हमारे इंद्र तृप्ति की इच्छा पूरी करने के लिए वो कल्प वृक्ष नहीं, क्योंकि वहाँ पर इंद्र तृप्ति का इच्छा कोई नहीं रहता है, सिर्फ भगवान की सेवा करने की इच्छा रहता है। तो ऐसे कल्प वृक्ष है, लक्षाव्रतेषु सुरभिर अभिपाल, भगवान क्या कर रहे हैं वहाँ पर, हाँ गाय चरा रहे। आजकल लोग गाय चराना उसको बहुत निम्न मानते हैं, हाँ या गाय को गोबर छूना मतलब वो उसको बहुत निम्न मानते हैं, ये गंदा गंदा साबुन शरीर के ऊपर लगाते हैं लेकिन गाय का गोबर नहीं छूते, पता नहीं क्या रहता है उसमें भगवान। किससे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जाके थोड़ा एक बार देख लिया तो कभी उसको छूते नहीं आप। बहुत सारा ऐसा जेलेटिन में होता है, वो सभी सोप में जेलेटिन होता है। तो ऐसे क्या बोलते हैं, तो वहाँ पर सुरभि अभिपाल इंतम, और ये सुरभि काय भी क्या है, प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं लिमिटलेस सप्लाई ऑफ मिल्क, असीमित दूध वो प्रदान करते हैं। आजकल ऐसा एक दूध नामक एक वाइट सब्सटेंस मिलता है लोगों को, वो दूध न्याय हो कुछ ऐसे पीते रहते हैं, हम लोग भी पीते हैं ना, दूध नामक एक वाइट सब्सटेंस है ना। सुरभि रवि पालन तक, इस भौतिक जगत में भी सुरभि लोक है जहाँ पर गाय रहते हैं। जब ये जो इंद्र का क्या हो गया, गर्व दमन का लीला हो गया, वो उस समय सुरभि गाय को लेकर आए हो, क्योंकि ये जानते थे भगवान कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है, इसलिए हम उसको लेकर आए, सुरभि माता के आश्रय ग्रहण करके इंद्र उनको लेकर आए, वो जो सुरभि गाय है ये इस भौतिक जगत के सुरभि लोक से है, लेकिन ये जो गाय है ये अलग है, ये दिव्य है, आध्यात्मिक जगत के है। वैसे गाय तो हमेशा पूजनीय है क्योंकि वो भगवान को प्रिय है, तो मनुष्य समाज में क्या है वो हमें यज्ञ करने के लिए सहायता करते हैं, और उसका दूध जो है हमारे आध्यात्मिक चिंतन मनन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वो माता है। सो गाय मतलब, लेकिन यहाँ पर जो सुरभि उनका वो आध्यात्मिक जगत के सुरभि है। और लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों हजारों संख्या में लक्ष्मियाँ गोपियाँ उनको सेवा करते हैं। जब भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदा हम भक्ति उपहारतम, भगवान भूखे नहीं हैं या उनको कोई सेवा करने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है, उनको हजारों हजारों संख्या में सेवा करने वाले हैं, लेकिन हम लोग ये सब अर्पण करेंगे तो हमें लाभ होगा। भगवान को यह सब अर्पण करेंगे तो हम लोग उनको लाभ होगा। और वो और भी क्या है वर्णन आता है, वेणुम कोणं तमरविंद दलायताक्षं बरहावतां समसिताम्बुद सुंदरांगं कंदर्पकोटिकमणीय विशेष शोभं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो भगवान आपके अनुसार भगवान का क्या धारणा है, भगवान कैसे दिखते हैं, क्या उनका रूप है, तो आपको पता नहीं तो हम बताएंगे। तो प्रभुपाद जी ये श्लोक उल्लेख करते थे, वेणु उनको नंदम अरविंद, वो वेणु बजाते हैं उनके अरविंद दलायताक्षम, उनके अक्ष क्या है नेत्र, सो कमल नयन है वो, अरविंद के दल के समान है वो, कमल के पुष्प के दल के समान है, ऐसा नेत्र हम लोगों ने देखा नहीं। हम लोग कलयुग में सब बोला क्या है कृप लोग है ऐसा ऐसा जो नेत्र कोई ऐसे कुछ लगा के ऐसे उसको लगा के कुछ ऐसे दिखावा कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनका नेत्र ऐसा नहीं है। तो भगवान के भौतिक जगत में भी बहुत सारे ऐसे सुंदर लोग हुआ करते थे जिनके नेत्र कमल के समान होता था, बहुत सुंदर होते थे, लेकिन ऐसा कभी अनुभव नहीं हम लोगों को। तो लंबे आंख तो शायद चित्र में देखा होगा, वो चित्र बनाने वाला भी नहीं है अभी आजकल, क्योंकि वो उनको कुछ अनुभव हुआ तो चित्र लिखेंगे ना, है ना या ऐसे कुछ वर्णन सुना हो तो, आजकल तो ऐसे वर्णन सुनते ही नहीं है ना, सब लस्ट काम का कुछ वर्णन होता है। तो अरविंद दलायताक्षम, भगवान के नेत्र क्या है अरविंद दल के समान है। बरहावताम समसिताम बुद सुंदरांगम, तो वो मोर पंख पहनते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं, और कोटि कोटि जो कंदर्प है उनको भी वो विमोहित करते हैं, तो ऐसे उनका सुंदरता है। भौतिक जगत में ये कंदर्प क्या है बहुत बहुत सुंदर व्यक्ति है, सबसे सुंदर व्यक्ति है, तो सभी अप्सराएं उसके पीछे पड़े रहते हैं भौतिक जगत में, लेकिन ऐसे व्यक्ति ऐसे करोड़ों करोड़ों या कोटि कोटि कंदर्प भी भगवान की सुंदरता से विमोहित हो जाते हैं, तो ये उनका सुंदरता। इसका अर्थ क्या है, जो ज़्यादा सुंदरता होता है ज़्यादा लोग उनके पीछे फिदा हो जाते हैं ना, है कि नहीं, तो ऐसे कोटि सुंदर मन्मथ भी उनके पीछे पड़े या विमोहित हो जाते हैं उनकी सुंदरता से। सो ये उनका सुंदरता, ऐसे ब्रह्म संहिता में वर्णन हुआ। यहाँ पर प्रॉपर कठोपनिषद को भी उल्लेख कर रहे हैं, पुरुषम न परम किंचित स काष्ठा परमागति ही। तो पुरुषम न परम किंचित, उससे भी और श्रेष्ठ कोई गति नहीं है, या नहीं उनसे भी और कोई परे व्यक्ति नहीं है, पुरुषान न पर किंचित स काष्ठा परमा गति ही, और उनके धाम भी सर्वोच्च गति है। ऐसे परमाम गति शब्द यहाँ पर आता है ना इस श्लोक। सो तो और श्रील प्रभुपाद अंत में इस भौतिक जगत में जो वृंदावन धाम है ना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दिल्ली में, दिल्ली के पास, लेकिन वो वास्तव में उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो यार दिल्ली के पास नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत है वो। तो वही जो गोलोक वृंदावन है उसका परछाई है ये, सो रेप्लिका, उसका ही विस्तार यहाँ पर होता है। जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो वो भौतिक जगत में प्रकट नहीं होते। जैसे हम लोग परमात्मा के बारे में चर्चा कर रहे थे, परमात्मा वो कभी भी किसी को भेदभाव नहीं करते, सबके हृदय में रहते, निम्न पशुओं में भी रहते हैं, लेकिन वो ऐसे स्थिति में रह के वो कभी उससे प्रभावित नहीं होते ऐसे स्थिति से। वैसे ही भौतिक जगत में जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो अपने धाम को लेकर आते हैं स्वयं, तो वहाँ पर सभी वो आध्यात्मिक स्थान है, ये भौतिक जगत का नहीं है। जैसे पिछले श्लोक में वर्णन आता है कि जब इस भौतिक जगत का नाश हो जाता है तो वो अब गोलोक वृंदावन जो आध्यात्मिक जगत है उसका नाश नहीं होता, वैसे ही ये जो वृंदावन है भौम वृंदावन जिसको कहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ है उसका नाश नहीं होता है, तो वैसे ही रहता है। तो क्योंकि वहाँ पर आध्यात्मिक जगत के नियम लागू होते हैं। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे, जैसे जब एक दिल्ली में एक जगह है जिसको चाणक्यपुरी कहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग देशों के राजदूत है, वो राजदूत क्या होते हैं, राजदूत का आवास स्थान होते हैं वहाँ पर। तो वो अलग अलग अमेरिका का राजदूत होता है या जापान का राजदूत होता है, रशिया का राजदूत होता है, तो वहाँ पर भारत के नियम लागू नहीं होते उनके, जहाँ पर जो जो उनके अलग उनके उनके देशों का नियम लागू होते हैं वहाँ पर। तो वैसे ही जब भगवान के धाम यहाँ पर प्रकट होता है भौतिक जगत का नियम वहाँ पर लागू नहीं होता, भगवान का धाम है वो। तो है ना, तो ये वृंदावन धाम है, वो कितना बड़ा है यहाँ पर बताते हैं। आध्यात्म आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से क्या है वो 90 miles, वो लोग 90 mil दक्षिण पूर्व में स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया तो उन्होंने उसी भूमि पर जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है क्रीड़ा की थी, उन्होंने ऐसे क्रीड़ा किया था। तो अगला श्लोक, परस पुरुष स पर अपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्त्वां तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम। भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं, यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। तो पहले इसके पहले बताया भगवान ने, तद धाम परमम मम ऐसे कहते हैं। धाम बोले तो क्या है, वो विविधता है, उसका निराकार नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे पुरुषस्य परपार्थ ऐसे कहते हैं, जो महान पुरुष है। यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम की फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। तो परम पुरुष है ना। तो और भगवान और शिल प्रभुपाद इसको वर्णन कर रहे हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता विस्ताविर्य एव निज रूप तया कला विस् गोलोक एव निवसत अखिलात्म भूतो गोविंद आदि पुरुषम तम हम बजामे। तो कहते हैं आनंद चिन्मय वहाँ पर क्या कैसे होता है, सभी लोग दुखी नहीं है ऐसे, दुखी मरोस या बहुत सारे चिंताग्रस्त नहीं है लोग, आनंद चिन्मय रस अधिभावित आदिश। तो आनंद चिन्मय रस है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित आदिश ताबीर एव निज रूप थया कला भी। तो किनके साथ आनंद चिन्मय रस में लगे हैं भगवान, अपने ही थया कला भी ही, अपने ही प्रतिरूपों के साथ या उनके अंशों के साथ, अंश मतलब विशेष करके यहाँ पर उनके जो भक्त होते हैं गोपी वगैरह, गोपी या श्रीमती राधा रानी, तो वो भी आध्यात्मिक है बोलते, आनंद चिन्मय है वो भी, वो लोग भी जैसे भगवान चिन्मय है वो भी चिन्मय है। तो गोलोक एव निवसत अखिलात्म भूतो, ऐसे वो गोलोक में स्थित होकर लीला करते हैं, सभी अखिलात्म भूतो सभी लोगों के हृदय में भी भगवान निवास करते हैं, ऐसे गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजन, ऐसे गोविंद को मैं भजन करता हूँ ऐसे कहते हैं। तो ऐसे वो कहते हैं और यहाँ पर और भी वर्णन कर रहे हैं, तो भक्त्या यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। तो यस्यांत स्थानी प्रत्येक वस्तु क्या है उनके ऊपर ही आधारित है, तो उनके ऊपर ही आधारित है या वही आधार है, उनमें है वो सभी चीज, तो वो परम पुरुष है, पुरुष सब पर पार्थ। तो भौतिक जगत को भौतिक शक्ति के आधार पर है, उनके भौतिक शक्ति के द्वारा है, और आध्यात्मिक शक्ति के, आध्यात्मिक जगत क्या है, उनके आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर है, तो यह आध्यात्मिक शक्ति से बना है। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे और प्रभुपाद यहाँ पर और वर्णन करते हैं कि भगवान कैसे अलग अलग रूपों में वो वहाँ पर वैकुंठ लोकों में विद्यमान, कृष्ण के पराधाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। भक्त्या लभ्यस्त अनन्या, अनन्य भक्ति के द्वारा ही उसको प्राप्त कर सकते हैं, अन्य कोई चीज से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो विशेष करके जब हम लोग प्रेमा भक्ति को प्राप्त करते हैं तभी उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसको ये अनन्य भक्ति, किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तपन उपनिषद में परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है, एको वशी सर्वगह कृष्णा, तो उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है, रहता है क्या है ये उसको क्या बना देते हैं भगवान को, है ना लोग, आई एम फीलिंग अनहैप्पी टू रीड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इट डजंट लुक गुड नो राइट और नॉट, है ना, कोई करना चाहिए ना इसको, हिंदी, यू आर हिंदी पर्सन नो, हियर ऑल आर He doesn't know reading also. You know English reading? उस दाम में या वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक स्वरूप एक रूप में स्थित होकर वह अपने लोगों अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करते हैं. वाई दे आर सो एनवियस ऑफ कृष्णा. करता है लिखता है ना, करता रहता है, क्या है, व्हाट इज दिस, सच अ नॉनसेंस, सच अ रैस्कल डोमेट इज एक्चुअली. It is expressed like that in Hindi. It is okay. It is out of love they express like that. No. वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष के से दी गई है जिसने नाना प्रकार के फूलों तथा फले लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती है. तो वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी है और विभिन्न नामों से विख्यात है. पुरुषोत्तमा, त्रिविक्रमा, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीतरा, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि. हम लोग इनको और विस्तार से आगे जाके चर्चा करेंगे, इनको ऐसे कैसे ये नाम दिए जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर एक चीज हमें याद रखना चाहिए इसमें, जैसे भगवान के धाम में भगवान के हर एक रूप जो है वो हमेशा विद्यमान रहते हैं. अलग अलग रूपों में भगवान विद्यमान रहते हैं. तो वो श्लोक हम लोग पढ़े थे ना चौथे अध्याय में, प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं चैतन्य चरितामृत में, परम यो में सबारा अवस्थान ऐसे बताया गया. वो अवतार में, अवतार के बारे में, अवतार क्या होता है उसका जब वर्णन करते हैं वहाँ पर वर्णन आता है, सबका उनका अस्तित्व होता है, वो विद्यमान रहते हैं अलग अलग लोकों में, समय समय पर इस भौतिक जगत में वो प्रकट हो जाते हैं. राम, नरसिंह, वराह, कूर्म या ये सभी चतुर्भुज जो है वो सब वहाँ पर रहते हैं, उनके भक्त उनको नित्य सेवा करते रहते हैं, समय समय पर इस जगत में वो लोग प्रकट हो जाते हैं या भगवान के अवतार होते हैं. जब इस जगत में वो प्रकट हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, अवतार कहते हैं. अवतार मतलब जो अवतीर्ण होते हैं. सो और जब अवतीर्ण होते हैं तो भी वो लोग कभी अपने जो मूल जो स्थिति है उसको कभी उससे वो अच्युत नहीं होते हैं, इसलिए उनको अच्युत कहते हैं. ठीक है. यहाँ पर फिर से ब्रह्म संहिता का उल्लेख कर रहे हैं भगवान श्रील प्रभुपाद की पुष्टि की गई हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते किंतु वो सर्वव्यापी है ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता है. कौन सा श्लोक है ये, 37वां श्लोक कौन सा श्लोक है, वही श्लोक जिसका हम लोगों ने पहले चर्चा किया. आरंभ के पहले पैराग्राफ में ब्रह्म संहिता इस परम धाम का आनंद चिन्मय रस कहा गया, वही श्लोक को अंत में भी फिर से दोहराए. आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता विस्था वीर्य निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजाम. तो ये देखिए कैसे है, भगवान वहां पर भी विद्यमान है और सभी लीलाएं कर रहे हैं और सभी जीवन के हृदय में भी एक साथ विद्यमान है. ये सब उनके अचिंत्य शक्ति के द्वारा होता है ना, है ना. तो उनके अचिंत्य शक्ति और अचिंत्य रूप के द्वारा होता है ये सब चीज़ एक ही साथ में. वहाँ पर भी वो लीला करते रहते हैं और सभी जीवों के हृदय में भी विद्यमान रहते हैं. तो वे सर्वव्यापी है, यस्यन्ता स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम, और उनमें सब कुछ स्थित है. सो येन सर्वम इदं ततम, इसका वर्णन है ये सब जो हम लोग कर रहे हैं ना, समझ में आ गए. येन सर्वम इदं ततम, तो सबके हृदय में वो विद्यमान है. वेदों में श्वेताक्षर उपनिषद में कहा गया है कि पराश शक्तिर विविधैव शिवेते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, उनकी शक्तियाँ इतना व्यापक है कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप में संचालित करती रहती है। दृश्य जगत क्या है वो समझ में आ रहा है, ये ठीक तरह से नहीं है ना, ये भी उनकी शक्ति है इतना व्यापक, वो शक्तियों के बारे में होता है ठीक है। तो मतलब क्या है, भगवान वहाँ पर विद्यमान रहते हैं फिर भी यहाँ पर भौतिक जगत में भी वो उनका अस्तित्व होता है, सब कुछ उनके शक्तियों के द्वारा अच्छी तरह से संचालित होता है। सो और इस श्लोक से बाद 26 श्लोक तक अलग अलग सही समय पर कैसे देह त्याग करना चाहिए और उसके लक्ष्य क्या हो जाता है, अलग अलग समय पर जब देह त्यागते हैं उसका लक्ष्य गंतव्य क्या होता है उसके बारे में वर्णन करते हैं। यत्र कालेतनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयातयादितं कालं वक्षामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। तो इन कालों के बारे में वर्णन कर रहे हैं किस काल में है। लेकिन भक्तों के लिए यहाँ पर इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये श्लोक है क्या है, अनलाइड डिवोटी दैट्स व्हाट या सो हम लोग आठवें श्लोक के आठवें अध्याय के 14 श्लोक है। इस अध्याय के 14 श्लोक में हम लोगों ने देखा कि क्यों भक्ति है सर्वश्रेष्ठ है, सुपर एक्सलेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस अन्य योग पद्धतियों के द्वारा। तो यहाँ पर इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक और कारण बताते हैं क्यों वो भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्तों को ये समझना जरूरी नहीं है कि कब उनको देह त्यागना चाहिए, उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसे काल के ऐसे समय के बारे में वर्णन करूँगा जिस समय देह त्यागने से एक व्यक्ति वापिस आ सकता है, या ऐसे समय का वर्णन करूँगा जिसके कारण उस समय जब देह त्यागते हैं तो वापिस नहीं आएगा, ऐसे हुए उन समयों के बारे में भगवान वर्णन। इनके बारे में भक्तों को सोचने का जरूरत नहीं है ऐसे बोलते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ये सब देखभाल करते हैं कर लेते हैं उनके बारे में। तो ऐसे गलत समय पर भी वो जन्म उनका मृत्यु हो गया तो भी कुछ नहीं होगा भक्तों को, भगवान क्या करते हैं वो सब उनके ऊपर कृपा करके वो सब उनको भगवद्धाम लेके जाते हैं। जैसे ऐसे कहा गया है भागवत में, वास्तव में जो भीष्म देव है जब उनका युद्ध हो गया तो दक्षिणायन चल रहा था, तो वो उत्तरायन आने तक उन्होंने वेट किया, ऐसे वर्णन आता है महाभारत में वगैरह। लेकिन श्रील प्रभुपाद भागवत में वर्णन करते हैं वो भगवान को आने तक वेट कर रहे थे ताकि भगवान को दर्शन करते करते अपने देह को त्याग दे। वो उत्तरायण भी आ गया, वो एक्चुअली मैं आगे बताने वाला था जहाँ पर उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में वर्णन। एनीवे तो भक्त लोग उसका चिंता नहीं करते, लेकिन हालांकि इनके बारे में वर्णन हुआ है भीष्मदेव के वो वेट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे महाजन है तो उसके कारण वो वेट नहीं करेंगे, वो भगवान कृष्ण को आने तक वेट कर रहे थे क्योंकि उनको दर्शन करते करते वो अपने शरीर त्यागना चाहते थे। तो जब भगवान के उपस्थिति में शरीर त्यागना मतलब वो बहुत ही महान चीज है, तो इससे और वापस इस जगत में वो कभी आ नहीं करते, निश्चित ही भगवान के धाम चले जाएंगे। वैसे तो वो बहुत सारे प्रार्थनाएं अर्पण किए भगवान को, और विशेष करके उन्होंने बताया कि मुझे ऐसे उस दृश्य को मैं मेरे मन के सामने रखना चाहता हूँ जो युद्ध भूमि में विजय सके के रूप में, विजय सके, विजय मतलब अर्जुन, अर्जुन के मित्र के रूप में उन्होंने क्या किया, वो जो पहिए रथ के पहिया पहिया उठाया उन्होंने, तो उस रूप को स्मरण करके करके मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ, ऐसे वो प्रार्थनाएं भी अर्पण करते हैं। तो ऐसे भीष्मदेव ऐसे बोला जाता है उनके बारे में, लेकिन वास्तव में वो कारण नहीं, क्योंकि भक्तों के लिए इसके बारे में चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये विशेषता है, ये भी लिख लीजिए उसके साथ साथ, ये भक्ति का क्या सर्वश्रेष्ठता है। और उसके सामने इस तात्पर्य का भी संकेत कर दीजिए उसको। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे, वे सब कुछ कृष्ण पर जोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम में जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहता है, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वह आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटने होगा या नहीं। तो एक और चीज हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप देखिए कितना ये भगवद्गीता और वैदिक संस्कृति जीवन को कितना सुचारू रूप से व्यवस्थित किया गया था, है ना, ये और इतना रिफाइंड कल्चर है ये, है ना, ऐसे सभ्यता है वैदिक सभ्यता कि किस समय पर मृत्यु होना चाहिए उसको भी वो जागरूकता से समझते हैं, इतना नियमबद्ध है वो। आजकल कैसे जन्म लेते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह जन्म लेते हैं और कुत्ते बिल्ली की तरह मर जाते हैं कुछ पता नहीं लोगों को, है ना और भगवद्गीता में भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं। अभी आपको ऐसे समयों का वर्णन करूंगा जिससे आप वापस आ सकते हो या वापस नहीं आ सकते हो। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत में जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यह यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि जब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। तो वो लोग जो सही समय पर शरीर त्याग देते हैं तो वो काल की देवता उनको लेकर चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ऐसे अग्निर्ज्योतिरिह शुक्लः षण्मास उत्तरायणम् तत्र प्रायात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। तो जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में है, प्रकाश में है, दिन के शुभ क्षण में है, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्म देवी देवताओं का एक एक दिन को हमारे 6 महीने हो जाते हैं एक दिन, और उनके रात भी हमारा 6 महीना, तो उनका एक पूरा दिन हमारा 1 साल हो जाता है। तो विशेष करके स्वर्ग लोक में है ना, तो उसको उत्तरायण और दक्षिण, ये 6 दिन और रात को क्या देवी देवताओं के दिन और रात को ही क्या बोलते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन बोलते हैं। इस समय पर जो सूरज जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या बोलते हैं उसको, उत्तरीय उत्तरीय गोलार्ध में रहते हैं उसको उत्तरायण कहते हैं, और जब दक्षिण गोलार्ध में रहते हैं तो उसको दक्षिणायन, उनको दक्षिण, उसको दक्षिणायन कहते हैं। 6 महीने ऐसा होता है, आप उसका अनुभव कर सकते हैं। 6 महीना वो ऐसे दक्षिण दिशा में जाते हैं, 6 महीने उत्तर दिशा, ये तो उत्तर दिशा है, और 6 महीना ऐसे दक्षिण दिशा में, वैसे वो उगते ऐसे है लेकिन 6 महीना ऐसे जाते हैं वो, सो दक्षिण दिशा में, हाँ, और 6 महीना उस साइड में रहते हैं वो। वैसे पूर्व और पश्चिम में सूर्य का उदय और अस्त होता है, लेकिन वो ऐसे उसको अनुभव कर सकते हैं। अभी बताइए कहाँ पर है, दक्षिणायन है या उत्तरायण है, बताइए। दक्षिण कैसे, हाँ दिन कम हो रहा है तो आप देख सकते हैं दक्षिण की ओर है वो, है ना, इस तरफ है। या भाई दक्षिण है, ठीक है ना। तो अभी फरवरी तक, शायद जनवरी फरवरी तक वो दक्षिणायन में रहेंगे, फिर जनवरी मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 14 वहाँ पर फिर दक्षिण उत्तर की ओर चले जाते हैं। तो ये सब वो भागवत में वर्णन आता है, सूरज के जो मूवमेंट्स है, मूवमेंट्स मतलब गति, गति के बारे में वर्णन आता है, पूरा एक अध्याय इसके बारे में उसको समर्पित किया गया भागवत में। तो कैसे वो चलते हैं, कैसे उस दिशा में जाते हैं, कैसे उत्तरायण होता है, कैसे दक्षिणायन होता है, ये सब चीज़ वर्णन आता है, ठीक है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वहाँ पर कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भगवान, परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जब परब्रह्म के ज्ञाता है, ये सब जरूरतें हैं उनके लिए, अग्निदेव के प्रभाव में है, अग्निदेव के प्रभाव में मतलब तो प्रकाश में, अग्निर्ज्योतिर यह शुक्ल, शुक्ल पक्ष आप जानते हैं ना, एक महीने को भी 2 भागों में विभाजित, जैसे 1 साल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है उत्तरायण दक्षिणायन, वैसे ही 1 महीने को भी 2 भागों में विभाजित, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब वो चंद्रमा के रोशनी रहती है, शुक्ल पक्ष मतलब अंधेरा रहता है, कृष्ण पक्ष मतलब सो प्रकाश में है, वही शुक्ल शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहते हैं, जब व्हाट इज दिस एक्चुअली, दोज हु नो द सुप्रीम ब्रह्मन अटेन द सुप्रीम बाय पासिंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ड्यूरिंग द इंफ्लुएंस ऑफ फायरी गॉड इन द लाइट एट एन ऑस्पिशियस मोमेंट ऑफ द डे ड्यूरिंग द फोर्टनाइट ऑफ द वैक्सिंग मून और ड्यूरिंग द 6 months व्हेन द सन ट्रेवल्स इन द नॉर्थ। तो ये सब जैसे पिछले तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी बताते हैं बलदेव विद्याभूषण को उल्लेख करके, खाल मतलब खाल की देवता, ये जो भी बोला जा गया है यहाँ पर उनकी देवता है, अग्नि देव है, प्रकाश का भी देव है, दिन दिन के शुभ क्षण अलग अलग क्षणों का भी देवता होते हैं, शुक्ल पक्ष उनके भी देवता होते हैं। वो लोग क्या कर देते हैं, ये जीवात्मा को लेकर जाते हैं, उनको लेके आके ऐसे ऊंचे 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 छोड़ देते हैं उनको, इसको देवयान भी कहा गया है। तो 2 मार्ग होते हैं, देवयान और एक और है, नहीं लिखा उसको मैंने, बाद में हम उसको बता देंगे। तो ऐसे मार्ग, 2 मार्गों से जीवात्मा ऊंचा लोकों में भी जा सकता है, या परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, या ऐसे नीचे भी जा सकता है। सो जब अग्नि प्रकाश दिन तथा पक्ष के उल्लेख रहता है, तो यह समझना चाहिए कि इस सबों के अधिष्ठाता देव होते, उनके देव होते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, वैदिक सभ्यता में कोई भी ऐसे निराकार नहीं है। आजकल के जो सभी ग्रह नक्षत्र क्या है, दे आर द मास ऑफ मैटर, ऐसे विज्ञान में वर्णन आता है, दे आर मास ऑफ मैटर। लेकिन वो मास ऑफ मैटर, वो मैटर तो रहता है वहाँ पर, क्योंकि भौतिक जगत तो भूमि रखो नलो वायु से ही बना है, लेकिन उनके अधिष्ठाता देवता भी रहते हैं, जिनका शक्ति से ये सब प्रकट होता है, वो सभी ग्रह नक्षत्र प्रकट होते। जैसे हम पृथ्वी माता कहते हैं ना, ये पृथ्वी क्या है, पृथ्वी माता का शक्ति के प्रकट रूप है ये, है ना। ऐसे तो पहले जमाने में सब लोग ऐसे जानते थे, सूरज मतलब सूर्य देव होते हैं, चंद्रमा मतलब चंद्रदेव होते हैं। हाँ, पाश्चात्य देश में भी इसको ऐसे समझा जाता था। केपलर, केपलर है ना, केपलर के समय तक मतलब वो कैसे 16वें सदी में था, वो 16वें या 17वें सदी में, उस समय तक 16वें सदी में, उस समय तक पाश्चात्य देश में भी लोगों को पता था कि ग्रहों के पीछे कोई व्यक्ति है, कोई कोई व्यक्ति है। ये केपलर के बाद जो आधुनिक विज्ञान का जो क्या हो गया, हाँ जो विकास हो गया, तो बहुत सब लोग क्या कर बोलने लगे, ये सब ग्रह और क्या है, सिर्फ एक जड़ वस्तु है, मास ऑफ मैटर। तो क्या अंतर होता है इससे, इसके कारण क्या अंतर होता है, व्यक्ति नहीं है तो क्या अंतर होता है, अंत में हम परम जो व्यक्ति है उसको भी नहीं जानेंगे और सब कुछ अनहोली अधार्मिकता फैल जाता है। आप कुछ भी कर सकते हो, हम ही लोग इस ब्रह्मांड में बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे हो जाता है, कोई अन्य लोगों में कोई जीव नहीं है ऐसे, है ना, ऐसे लोग सोचता है अहंकार से, है ना, हम ही एक ही व्यक्ति है इस जगत में, है ना। तो ऐसे होलिस्टिक व्यू वॉज देर, धार्मिक दृष्टिकोण था ब्रह्मांड के बारे में भी जो जान ज्ञान था उसने। अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा का व्यवस्था करते हैं, मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन नवीन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजनापूर्वक उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनके जन्म मृत्यु के चक्र लौटना नहीं पड़ता है, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या शुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मास दक्षिणायन तत्र चंद्रमसाम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। ऐसा योगी जो वापिस आता है उनके बारे में, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहाँ पुनः चला आ जाता है। तो क्योंकि ये लोग योगी है इसलिए उनको ऊंचा गति मिल जाता है, सभी जो योगी है उनको कुछ ना कुछ ऊंचा गति मिलना चाहिए, तो इसके कारण वो चंद्रलोक में जाते हैं और वापस यहाँ पर आते। श्रील प्रभुपाद इसके बारे में विश्लेषण कर रहे कि कपिल मुनि तृतीय स्कंद में ऐसे जन्म लेकर, ऐसे व्यक्ति जो मृत्यु होता है तो चंद्रलोक में जाके 10,000 वर्षों तक वहाँ पर रहते हैं, तो फिर उसके बाद सोमरस पीने के बाद वापस आ जाते हैं यहाँ पर। तो क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति ऐसे कहते हैं। शुक्ल कृष्ण गति है ते जगता शाश्वत मति एकया यात्यना वृत्तिम अन्यावर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग है, एक प्रकाश का दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से आने वाला पुनः लौट कर आता है। तो आचार्य बलदेव विद्याभूषण छांदोग्य उपनिषद से 5:10-3-5 ऐसा ही विवरण विद्वत किया है, जो अनादिकाल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहते हैं, निरंतर आवागमन करते रहते रहे हैं। हाँ, ऐसे बनना चाहते आप, सकाम कर्मी और दार्शनिक चिंतन, आना जाना आना जाना आना जाना में कितने सारे जीव। लेकिन आजकल उतना ऐसा होता नहीं लगता है, ये कलयुग में कोई आना जाना नहीं होता है ना। वैदिक जगह, वैदिक समय में ऐसे हुआ करता था, आना जाना हुआ करता था वैदिक समय पर, लेकिन अभी तो कोई नहीं जाता है, ऊपर तो नहीं जाते है ना कोई, सब नीचे ही जाते हैं, नरक भर गया होगा अभी, है ना। यहाँ पर आना जाना होता है, नीचे की ओर से आना जाना होता है। क्या दुस्थिति है ना लोगों का, कैसे दुस्थिति है ना, अरे ना दुर्भाग्य कैसे है ना। तो जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे, वो भी वृंदावन में, वृंदावन लोग इसलिए जाते हैं कि वहीं पर रह के अपना शरीर त्याग ले, लेकिन सभी ऐसा होता नहीं है, सभी लोग ऐसे भी जाते हैं, हम वृंदावन में शरीर त्यागेंगे करके अच्छा घर बनाते हैं वहाँ पर, शरीर त्यागने के लिए वहीं पर निवास करते हैं, अंत में वो दिल्ली हॉस्पिटल में अपना शरीर त्याग। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कितने सारे ऐसे मूर्ख लोग वहाँ पर गया है ना, है ना। तो बड़ा बड़ा इमारत बांध के सब बर्बाद किया है वो सब जगह, हाँ सभी वृंदावन का जो वातावरण है सब बर्बाद किया है। अभी इतना मोटर कार भर गया, वृंदावन तो गांव था, वन था, वो गायों का वो गोकुल है, गायों से हमेशा भरा रहता है, वहाँ पर अभी क्या है, मोटर से भरा है, अब बड़े बड़े इमारतों से भर गया है। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर रहा करते थे, लोग इनको देखकर आश्चर्यचकित थे, क्यों, ये तो ये उस समय वो सन्यासी नहीं थे, वो बंगाली बाबू कहा करते थे उनको, ये बंगाली बाबू तो हमेशा क्या करते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लोग यहाँ पर वृंदावन में आते हैं नहीं नहीं जाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी का क्या मिशन था, वो दिल्ली आकर पुस्तक छाप के, विशेष करके अपना जो बैक टू गॉड एट भगवत दर्शन जो है उसको छाप कर वो सभी वितरण करके फिर वापस जाके वहाँ पर लिखते थे, फिर वापस आके ऐसे उसको छापते थे, ऐसे प्रचार के लिए आते जाते थे। प्रभुपाद जी भी कहते हैं वृंदावन क्या है, एक सिर्फ प्रेरणा स्थान है, अभी तो वहाँ पर कुछ प्रेरणा नहीं मिलेगा आप लोगों को, तो कुछ प्रेरणा स्थान है वो सिर्फ, हमारा वास्तविक क्रियास्थल क्या है, पूरा संसार है, वहाँ पर हमें प्रचार करना है। तो ये लोग ऊपर जाके ऊपर नीचे आना जाते हैं, आना जाना होता, वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण के शरण में नहीं जाते। तो ये जो अंतिम जो दो श्लोक है वो भगवान की भक्ति को फिर से गुणगान करते हैं। नहीं ते श्रुति पार्थ जनन्योगी मुह्यति, योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। सो नहीं ते श्रुति पार्थ, इन दोनों को, विभिन्न मार्गों को, श्रुति पार्थ जनान योगी, जानन योगी, जानते हुए भी न योगी मुह्यति कश्चन, कभी भी वो मोहित नहीं हो जाते हैं, मोहग्रस्त नहीं हो जाते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन, इसलिए हमेशा योग में युक्त रहो। तस्मात् कालेषु सर्वेषु, नित्य युक्तस्य योगिना, ऐसे बताया गया ना, शुद्ध भक्तों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कृष्ण अर्जुन के उपदेश
अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कि उसे इस जगत में आत्मा के प्रयाण काल के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित ना नहीं होना चाहिए। आप लोग तो नहीं हुए ना ये सुनकर, ये क्या है और अच्छा जानना चाहते हैं हम लोग देवयान, हाँ है ना, तो वो मिश्र भक्ति है। इसको ऐसे सोचना, भगवान के ऊपर हमें निर्भर रहना चाहिए, रक्षिष्यति इति विश्वास हो। भगवत भक्त को ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैव वशात। भक्त को कृष्ण बाणामृत में दृढ़ पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी के भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण बाणामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योगों में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों के निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। शिल रूप गोस्वामी का उपदेश अनासक्त से विषय अनितारम पजुंजता, मनुष्य को संसारिक कार्यों को अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक उसका प्रयाग सुनिश्चित है। वेदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव दानेषु यत्पुण्य फलप्रदिष्टा अतेति सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेक्षति। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नियत्य धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त। सो हम लोग भक्ति कैसे श्रेष्ठतम है अन्य योग पद्धतियों को, ये एक और जोड़ना चाहिए छठा, कि जो अन्य मार्गों से जो फल हमें प्राप्त होता है वो भक्ति करने से स्वतः प्राप्त हो जाता है। सब कुछ है ना, हम लोग कर्मकांड में लगे हैं तो सिर्फ कर्मकांड का फल मिलता है, जो ज्ञान कांड में लगे हैं तो ज्ञान कांड, लेकिन भक्ति में जो लगे रहते हैं उनको वो सब फल प्राप्त हो जाता है और अंत में परम धाम को भी प्राप्त हो जाता है सर्वोच्च। वो भी लिखना चाहिए, परम धाम को भी हम लोग प्राप्त करते हैं करके क्या नहीं लिखते हैं, लिखने के लिए बोल रहे हो, कहाँ खो जाते हो तुम लोग है ना। बताओ क्या क्या है, क्यों भक्ति मार्ग क्या है, बहुत श्रेष्ठतम है, सुपर एक्सलेंट, एक एक करके बताओ मनोहर और उनके गुरु जी। हाँ तो उससे पहले के कुछ बताओ, पहले भी चार पांच हमने बताया ना, आठवें अध्याय के चौदहवें श्लोक में बताया ना। और ओके ठीक है ठीक, हरे कृष्ण। तो कोई पढ़ेंगे तात्पर्य, क्योंकि ये प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो श्लोक है सातवें और आठवें श्लोक के उपसंहार समरी है। बड़ी
यह श्लोक सातवें तथा आठवें अध्याय का उपसंहार है जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्यों को अपने गुरु के निर्देशन में वेदा अध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है। और द्वार द्वार भिक्षा मांग कर गुरु के पास लाना होता है। उसी गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है। और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के कुछ वैदिक नियम।
तो ये ब्रह्मचर्य होता है। फिर हम लोग हर रोज क्यों प्रसाद दे रहे हैं? गुरु महाराज तो नहीं बोल रहे ना, हर रोज क्यों प्रसाद ले रहे हो? वैसे समर्पण भाव होना चाहिए, मुझे प्रसाद मिले या ना मिले मैं गुरु की सेवा करूंगा, ऐसे समर्पण, नींद मिले या ना मिले फिर भी करूंगा, ऐसा कह के आप लोग ज्यादा रात को देर में मत सोइए। हाँ, सो के जो थोड़ा बहुत भक्ति है वो भी नष्ट हो जाएगा। हाँ, सही समय पर अच्छी तरह से 6 घंटा रेस्ट लीजिए, ठीक है ना?
अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र,
लेकिन अंदर से वो समर्पण भावना होना चाहिए, जब भी जरूरत पड़े मैं करूँगा ऐसे करके, है ना? ठीक है।
अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है
तो वह परम चरित्रवान बन जाता। तो ऐसे चरित्रवान कैसे होते हैं? चरित्रवान वेदों के अध्ययन से, शास्त्र का अध्ययन 5 से 20 साल तक कम से कम। प्रभुपाद जी ने भी बताया ना, मेरे ग्रंथों को अध्ययन कर, एक बार ऐसे उन्होंने बताया मेरे ग्रंथों को अध्ययन करने के लिए 20 साल लगेंगे, ऐसे होते हम लोग तुरंत दूसरा बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अच्छी तरह से हम लोग समझने के लिए 20 साल लगेंगे हमको, तो वो प्रशिक्षण पूरा हो जाता है तब, ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण पूरा हो जाता है तो वो वास्तविक ब्रह्मचर्य बनेंगे, है ना? हम लोग 30 साल के बाद आते हैं फिर कुछ पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मनोहर भी 10 साल लेट हो गए, है ना? कितना है अभी? 17 ये बहुत हो गया, 12 साल हो गए। ठीक है।
वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है।
तो ये लोग एकेडमिक स्कॉलर्स जो है विश्वविद्यालय में वेदों का पाठ करते हैं ना, वो लोग वेदों को अध्ययन करते हैं, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए करते हैं वो लोग, लेकिन वो हमारा चरित्र बनाने के लिए वेदों का अध्ययन।
इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने, विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे
जब चरित्र बनता है तभी जाके विवाह करना चाहिए, ऐसे हाँ अभी भी चरित्र नहीं बना ऐसे ही विवाह कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है।
गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके।
तो वेदेशु मतलब ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया, वेदेशु शब्द आता है ना, वेदेशु ये जो श्लोक है वेदेशु शुरू होता है, तो वो ब्रह्मचर्य को संबोधित करता है। और यज्ञ मतलब जो गृहस्थों को, और
पढ़िए।
उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार सात्विक राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है जिससे उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा छौर कर्मा आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। जब इनमें से कुछ लोग स्वर्गलोक को जाते हैं और यदि वो और अधिक उन्नत करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसकी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है, किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर सकता है।
तो ये विभिन्न वर्ण और आश्रम को अनुष्ठान को पार करते हैं, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म वर्ण वर्णाश्रम नहीं चाहिए,
इसका अर्थ है वो वर्णाश्रम को भी भक्ति में कर सकते, कृष्ण भावनामृत में कर सकते हैं उसको, ठीक है।
एवं इदम विदित्व शब्द यह सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा सातवें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए, उससे विद्वता या मनोधर्म से इन दोनों अध्याय को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। सातवें से लेकर बारहवें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। प्रथम छह अध्याय तथा अंतिम छह अध्याय इन मध्यवर्ती छह अध्यायों के लिए आवरण मात्र है।
तो हम लोगों ने भगवत गीता के तीन वर्गों के बारे में चर्चा किए थे, और
जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन छह अध्यायों को भक्त की संगति में भलीभांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों के पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावना मृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त होता है।
और यहाँ पर अंतिम पैराग्राफ में भगवान वो भगवद्गीता के अध्ययन के नौ स्तरों वर्णन करते हैं, हम लोगों ने उसको चर्चा किया है। तो ये भगवद्गीता के अध्ययन के नौ स्तर क्यों वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, क्या संबंध है इसके साथ? बताइए। या या प्रभुपाद जी वैसे तो भगवत भक्ति के नाम जो स्तरों को वर्णन करता करना चाहते थे, लेकिन वो भगवत गीता के रूप में वो वर्णन करते हैं। तो कैसे होता है, यहाँ पर भगवत प्राप्ति के बारे में बोल रहे हैं, और इस श्लोक के आरंभ तात्पर्य के आरंभ में क्या बोलते हैं, ये श्लोक सातवें तथा आठवें श्लोक के अध्याय के उपसंहार है, उसका अर्थ क्या है, समरी है ना, समेशन ऑफ द सेवेंथ एंड एट चैप्टर, समरी सार है, उपसंहार है। तो सातवें अध्याय में आरंभ होके भक्ति का वर्णन आरंभ किया उन्होंने। हम जानते हैं ना तीन भाग है भगवद गीता का, तो बीच के जो तीन भाग क्या है, बीच के छह अध्याय क्या है, वो भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। इस अध्याय में क्या कहा गया, भगवत प्राप्ति का वर्णन हुआ है, मतलब ये सर्वोच्च लक्ष्य है भक्ति का, भगवान को प्राप्त करना। मतलब सातवें अध्याय के आरंभ से आठवें अध्याय के अंत तक दो अध्यायों में ये भक्ति के नौ स्तरों का भी वर्णन हुआ है। तो ऐसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इसलिए ये नौ स्तरों के बारे में वर्णन करते हैं भक्ति के। तो श्रवण करने से हमें श्रद्धा जागृत हो जाता है ना, तुष तश्णु बोलते हैं ना, मैया सत्य मना पार्थ योगम युंजन मदाशया, सो असंशय समग्र माम यथा ध्यासी तश्णु शृण्वताम सकता कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्त हृदय तस्तो या भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम, ऐसे वर्णन करते कैसे अनर्थों का निवृत्ति होता है ये सब चीज़। तो और अंत में क्या है, दृढ़ भक्ति में लग जाते हैं वो, अनर्थों का निवृत्ति होने के बाद तेषाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम थे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रतः। तो ऐसे दृढ़ भक्ति करने से वो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसे नौ स्तरों को वो वर्णन करते हैं वो। तो इस दो अध्यायों में या मतलब आरंभिक अवस्था से सर्वोच्च अवस्था का इस दो अध्याय में वर्णन हुआ है, ठीक है, इसलिए ये नौ स्तरों के बारे में वर्णन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम राम हरे हरे। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी? नो नो नो, क्योंकि सिर्फ भक्ति योग के लिए, क्योंकि या योगी लिखा गया, लेकिन योगी शब्द भक्त को लागू होता है, कई कई अन्य योगों के लिए भी उसको उपयोग किया जाता है। गीता में कई जगह योगी, वो भक्त के बजाय वो योगी शब्द उपयोग किया है भगवान ने, तो इसलिए ना वो 14वें श्लोक में क्या बोलते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति निच्छता तस्याहम सुलभपरता नित्य युक्तस्य योगिनः, तो योगी वहां पर वो भक्त बोल सकते थे। लेकिन ऐसे कई जगह भगवद गीता में, और उसको 6वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तपस्वी व्योधिको योगी योगी व्योति मतोधिक और तस्माद योगी बवार्जुन, ऐसे कहते हैं ना, क्या है वो, तपस्वीभ्यो भी मतोधिक कव्यश तस्माद योगी बवार्जुन। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, इस श्लोक में भगवान योगी क्या है, आप इस योगी शब्द को अष्टांग योगी भी कह सकते थे, है ना, लेकिन भगवान यहाँ पर वो ये नहीं बता रहे भक्ति से भी ये योगी, भक्त से भी ये योगी श्रेष्ठ है, ऐसे नहीं बताया, सिर्फ वो तपस्वी ज्ञानी और कर्मी के बारे में बताया गया है। तपस्वी मतलब ज्यादा से ज्यादा अष्टांग योगी होते है ना, तो भक्ति से भी ये योगी श्रेष्ठ नहीं, ऐसे नहीं बताया गया, इसके कारण ये योगी शब्द वहां पर किसको संबोधित किया जा रहा है, भक्त को संबोधित किया जा रहा है। हाँ, योगी बनो मतलब भक्त बनो, या तो इसलिए ये जो शब्द है अलग अलग दृष्टिकोण से उपयोग किया जा रहा है। वो दोनों श्लोकों में हम लोगों को क्या समझ में आता है, उसको अलग अलग दृष्टिकोण से योगी शब्द को उपयोग किया जाता है भगवद गीता में। कभी कभी सिर्फ भक्ति योगी को योगी करके संबोधित करते हैं भगवान, कभी कभी अन्यों को भी योगी करके भगवान संबोधित करते हैं। अन्यों को मतलब जो इंद्र तृप्ति से अपने फलों से अनासक्त है उनको योगी कहते हैं, है ना, जो फल से आसक्त नहीं है उनको योगी कहते हैं, और भगवान को जो जोड़ते हैं अपने आप को, सो आरंभ ऐसे होता है फल से अनासक्ति से, कर्म फल से, वो कर्म योगी है। तो इसलिए भगवद गीता में दोनों दृष्टिकोण से ये शब्द उपयोग किया गया, तो कहाँ पर कैसे उपयोग किया गया वो हमें आचार्यों से समझना चाहिए, नहीं तो हम लोग भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं भगवद गीता को अध्ययन करते करते करते। तो योगी परम स्थानम उपेति छाद्यम मतलब भक्त के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो वेदेशु यज्ञेशु तपहशु चैव ज्ञानेशु यत् पुण्य फल प्रदिष्टम, क्यों ऐसे हुआ है, तपस्या ज्ञान और कर्मी के बारे में जो वर्णाश्रम का पालन करते हैं उनके बारे में तो बताया गया है ना, ब्रह्मचारी गृहस्थ जो वर्णाश्रम में आते हैं, और जो तपस्वी होते हैं योगी होते हैं और ज्ञानी होते हैं, ज्ञानेशु यत् पुण्य फल प्रदिष्टाम, जो भी प्राप्त होता है वो भक्ति करने से भी योगी को भी प्राप्त होता है। और जब तक भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं और परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, और अन्य योगियों को ये श्लोक में वो अन्य योगी है तो ज्ञान योगी को जो भक्ति से प्राप्त फल प्राप्त होता है वो प्राप्त नहीं होता है ना, इसलिए जो योगी शब्द है वो भक्ति ही योगी है। क्लियर, हो सकता है भगवान की सेवा में हो सकता है, वो चाहते नहीं है लेकिन हो सकता है, आपको धन प्राप्त हो गया तो मंदिर बना सकते हैं आप, या आपको योग सिद्धि प्राप्त हो गया। ऐसे दक्षिण भारत में एक उदाहरण है, वो एक अलवार ने क्या किया, अपने शिष्यों को, उनके शिष्यों के पास योग सिद्धि था, वो लोग क्या कर दिया, बड़े बड़े लोगों को लूट के योग शक्ति को उपयोग करके श्रीरंगम में मंदिर बनाया उन्होंने बड़ा मंदिर बना, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे हो सकता है, उपयोग कर सकते वो लोग, ऐसे हो सकता है। हाँ, जैसे अर्जुन को बहुत सारा शक्ति प्राप्त हुआ था भगवान की कृपा से, उसे उन्होंने भगवान की सेवा में उपयोग किया, जब शक्ति उसका जरूरत नहीं था तो भगवान उसको वापस ले लिया, प्रथम स्कंद में वर्णन आता है ना, उनको प्राप्त हो सकता है। वो क्षत्रिय का शक्ति है, उनके जैसे योद्धा उस समय पर कोई नहीं था, वो देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ थे, जिनको देवी देवताएं जिन असुरों को हरा नहीं पाए अर्जुन उनको हराए। तो इतना शक्ति कहाँ से उनको प्राप्त हुआ, भगवान ने दिया उनको। या हनुमान जी में उड़ने का शक्ति है, वो योग शक्ति है एक, उपयोग कर सकते उसको, वो चाहते नहीं है, उनको सिर्फ सेवा चाहिए, लेकिन भगवान चाहते हैं तो उसको उपयोग करेंगे। जैसे हम कल्प वृक्ष के बारे में चर्चा कर रहे थे, कोई उनका वो इच्छा नहीं होता, क्यों कल्प वृक्ष है, भगवान की सेवा करने की इच्छा रहता है उनके अंदर, ठीक है। मुरलीधर प्रभु के प्रश्न बहुत दार्शनिक होते हैं, हाँ पढ़ाई किया उन्होंने बहुत अच्छी तरह से। वहाँ पर भक्ति भावना का प्राधान्य होना चाहिए, ठीक है, तब क्या हो जाता है, ये वर्णाश्रम के जो कार्य हो जाते हैं वो भक्ति का सहायक अंग बन जाते हैं, ठीक है, गौण अंग भक्ति अंग बन जाते हैं, हालांकि वो कर्मयोग है लेकिन फिर भी गौण भक्त अंग। जैसे हम उधर उसके बाद में आज सुबह चर्चा कर रहे थे ना, अलग अलग मिश्र भक्तियों का, तो वो लोग भी ज्ञान ज्ञान का भी, हम लोग ज्ञान का फिलोसफी समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना, अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर भगवदगीता में, लेकिन ये ऐसे ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं है, भक्ति के लिए अनुकूल कारक ज्ञान है ना। ऐसे प्राधान्यता क्या होना चाहिए, सेवा भावना होना चाहिए, तब वो शुद्ध भक्त है। नहीं हो सकता, अर्जुन तो मिश्रित भक्त नहीं है, वो भगवान जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, हालांकि अलग अलग जगह पर वो अर्जुन का युद्ध करना एक नियत कर्म के बारे में जैसे प्रस्तुत किया गया, लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, वो दूसरे अध्याय के 28वां श्लोक में देखे आप, 28वां श्लोक में या 28वां श्लोक में या 30वां श्लोक में, वो भगवान के ये इच्छा है इसलिए उनको युद्ध करना चाहिए अर्जुन को। सो कुरुक्षेत्र वार इज नॉट जस्ट अ क्षत्रिय ड्यूटी फॉर अर्जुन, इट इज अ डिजायर ऑफ द लॉर्ड, इट इज डिवोशनल सर्विस, इट इज अ विल ऑफ द लॉर्ड, इट इज, है ना। तो प्राधान्यता क्या है, आप बहुत दार्शनिक विषयों के बारे में चिंतन मनन कर रहे हैं लेकिन उससे उसके द्वारा सेवा नहीं कर रहे, तो आपका ज्ञान मिश्र भक्ति है, ज्ञान प्राधान्यता है वहाँ पर। फिलोसॉफिकल परस्यूट शुड नॉट ओवरराइड सर्विस एटीट्यूड, ऐसे दार्शनिक जो प्रयास है वो हमारे सेवा भावना से बढ़ना नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। वो है लेकिन कर्म का प्राधान्यता है उस श्लोक में, क्योंकि आप देखिए अनुवाद पढ़िए उसको।
अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्य में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण
है। नहीं नहीं अनुवाद या ठीक है। एनीवे हम इसलिए उसको कहा, आप पहले तात्पर्य में 8वें अध्याय के पहले तात्पर्य में देखिए, इस अध्याय में क्या क्या बताते हैं भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं। भगवान इस अध्याय में क्या क्या बोल रहे हैं बता देखिए, वहाँ पर क्या बोलते हैं, कर्म नहीं नहीं पहले तात्पर्य के एक दो लाइन देखिए आप, पहला लाइन से आप पढ़िए आप।
इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते,
पहले वो प्रश्नों का उत्तर दे देते, वो छठा श्लोक तक खत्म हो जाता है, उनका सभी उत्तर दे दिया उन्होंने छठा श्लोक तक। और उसके बाद में देखिए
भगवान कर्म तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं।
तो कर्म भक्ति और ज्ञान और योग ये सभी वहां पर भगवान वर्णन, और अंत में शुद्ध भक्ति 14वें श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं। और भूमिका में वो बोलते हैं सबका एक एक कर्म होता है, सबके लिए कर्म होता है ऐसे वो कहते हैं। इसलिए हमने उसके आधार पर इसको बताया कि ये कर्म मिश्र भक्ति है। वैसे एक दृष्टि से देखेंगे तो क्योंकि माम अनुस्मर युद्ध च, अनुस्मर क्या है युद्ध के पहले आया है, उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो शुद्ध भक्ति होनी चाहिए है ना, लेकिन फिर भी इसके आधार पर हमने ऐसे बताया ठीक है। और प्रभुपाद जी कहते हैं एक और तात्पर्य में आगे जाके है ना, कौन से तात्पर्य में 14वें अध्याय के 14वें श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा किसको जोर दे रहे वहां पर 14वें श्लोक को शुद्ध भक्ति करके जोर दे रहे, 10वें तात्पर्य में भी बोलते हैं और 14वें तात्पर्य में भी बोलते हैं वो है कि नहीं, 10वें तात्पर्य में पढ़िए 14वें तात्पर्य में पढ़िए सब जगह वो क्या 14 श्लोक को जोर दे रहा है, तो उसके आधार पर भी हम लोग समझ सकते हैं ठीक है।
युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, कर्तव्य को बोलने तो नियत करने के लिए
या सो ज्यादा वो या वो अनुवाद भी पढ़ेंगे तो भी हमें ऐसे पता चल जाता है ज्यादा कर्म के ऊपर जोर है। हालांकि माम अनुस्मर अनुस्मरा शब्द पहले आया है, वो एक चीज है जो जरूरी नहीं कि कर्म योग में वो लोग स्मरण करें भगवान को, फल को अर्पण कर सकते हैं वो है ना, वो कर्म योग हो जाता है वो। तो वो है ऐसे, लेकिन फिर भी कर्म का प्राधान्यता है। नहीं 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 जरूरी नहीं, शुद्ध भक्ति भी हो सकता है वहां पर, सिर्फ वो एक वातावरण को सृष्टि करता है भक्ति करने के लिए, शुद्ध भक्ति करने के लिए। यहाँ पर ऐसे वातावरण में हम लोग कर पाते हैं शुद्ध भक्त, वहां पर भी कर पाते हैं, लेकिन वो अच्छा वातावरण है उसको करने के लिए, इसलिए वो वातावरण क्या बन जाता है एक सहयोगी अंग बन जाता है भक्ति के लिए। जो जरूरी जो अनुकूल कारक है, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, जो अनुकूल कारक है उसको स्वीकार करते हैं, प्रतिकूल जैसे गोपियों ने क्या अनुकूल किया भगवान को संतुष्टि होगा, वैसे तो स्त्री तो अंधेरे रात में नहीं जाना चाहिए ना किसी पुरुष से मिलने के लिए, जो भी भगवान को प्रसन्नता लाएगा वो वर्णाश्रम में भी स्वीकार करेंगे, वो अपने अपने स्तर के अनुसार अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुञ्जते ऐसे उसको उपयोग किया जाएगा वर्णाश्रम को जितना हमें भक्ति के लिए जरूरत है। डेफिनेटली 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 गुरु के माध्यम से वो तो जो जो युक्त वैराग्य में जो जरूरी है वो जरूरी नहीं है वो तो गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। वो बार बार वहाँ पर भी वर्णन किए प्रभुपाद, और उत्साह निश्चय धैर्य तो उत्साह में भी वहाँ पर भी वर्णन करते हैं कि गुरु के क्या स्वीकार करना चाहिए, क्या रिजेक्ट करना चाहिए, वो क्या है, गुरु के मार्गदर्शन से ही करना चाहिए। ठीक है, हाँ उनके बारे में भी वर्णन हुआ है। वो अलग अलग भगवान के शंख चक्र वगैरह है, वो उनके आभूषण बहुत सारे उनके वर्णन आया है। अभी तो हमें याद नहीं हर एक अलवार के कौन कौन है वो करके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो लोग ऐसे है, वो आभूषण वगैरह है। ओके, हरे कृष्णा।